السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد اللہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹاپک ہم کریں گے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس. کتنے لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہوا؟ جی، اس سیشن میں ایک تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی کیا ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اس کی ڈومینز کون کون سی ہیں اور کون کون سے ایسے پرنسپلز ہیں جن کی بیس پہ آپ اپنے لیے ایموشنل انٹیلیجنس کو اختیار کر سکتے ہیں.
ڈفرینٹ ایموشنز کی ہم بات کریں، اگر
کیا کیا ہوتے ہیں، کیا کیا ایموشنز ہیں جو آپ خود آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، بتائیے. ٹھیک ہے جی، ہیپی ہے،
اینگر ہے،
اینگر ہے،
فیئر ہے،
فیئر. تو آپ دیکھیں کہ اسمائل ہو سکتی ہے، اچھا موڈ ہو سکتا ہے، ریج ہو سکتا ہے، غصہ، غصے کی بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ڈومیسٹک وائلنس میں لکھا ہے جس میں ایموشنز کا بہت بڑا رول ہے، ناراضگی ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہیں، چپکلش بھی چل رہی ہے، آپس کی انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے، ڈپریشن بھی ہے، اور بھی کتنے ہم ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ایموشنل انٹیلیجنس پہ جائیں، ہمیں کچھ ٹرمز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ایک ٹرم ہوتی ہے پرسنالٹی، ٹھیک ہے. اس کو عام زبان میں لوگ کہتے ہیں گاڈ گفٹڈ کوئی چیز ہے. مثلاً آپ دیکھیں، کچھ لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ ہمارے خاندان میں نا سب کو بہت غصہ آتا ہے. اچھا، کچھ کہیں گے کہ ہمارے خاندان میں سب دھیمے مزاج کے. کچھ تو آپ انوائرمنٹ سے لرن کر رہے ہیں، لیکن کچھ ٹریٹس آپ ضرور آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں ایسے ہیں، اس میں ایسا ہے. آپ اپنے بچوں میں بھی کئی چیزوں میں ڈفرینس دیکھتے ہیں. تو سائیکالوجسٹ بیسیکلی کہتے ہیں کہ پرسنالٹی ٹریٹس جو ہوتے ہیں یہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں. تو جیسے ہم سیرہ پڑھیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ پورا جو
شجرا ہے اور ان کی جو کوالٹیز کس طرح سے فلٹر ہو کے وہ ساری آ رہی ہیں. ایک تو وہ ہے
کیریکٹر کیا ہوگا جو ہم ایکوائر کرتے ہیں، یہ فرق ہے. کیریکٹر از چوزن. اگر ہم مثال دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، تو کیا تھا ان کی پرسنالٹی میں، کیا چیز بہت زیادہ اینگر، غصہ. لیکن جب وہ دین میں آئے تو ان کے کیریکٹر میں کیا آیا، انہوں نے کیا چیز چوز کی اس وقت، کیا وہ ساری زندگی یہی کہتے رہے کہ میں کیا کروں، میری طبیعت میں غصہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے اپنے کیریکٹر پہ ورک کیا. تو کیریکٹر ایک ایسی چیز ہے جو آپ چوز کرتے ہیں، آپ اپنے لیے ڈیفائن کرتے ہیں کہ میں نے یہ چیز اپنے اندر لانی ہے یا نہیں لانی. اس میں ظاہر ہے انوائرمنٹ کا رول ہوگا، آپ کے ارد گرد کتنے سٹیبل لوگ ہیں، آپ کی اپ برنگنگ کیسے ہوئی، کیسے لوگوں سے انٹریکٹ کیا، مختلف حالات میں آپ نے کیسے کوپ کیا، تو وہ ساری چیزیں آئیں گی. لیکن بیسیکلی یہ کیریکٹر جو ہے وہ آپ چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میچورٹی کیا ہے، ایکسپیرینس کے ساتھ آپ کا ایکسیپٹنس بڑھتا ہے. اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے، دس کین آلسو بی اچیوڈ. آپ دیکھیں کچھ لوگ ساری زندگی بھی امیچور رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارے دین میں ایک کانسیپٹ ملتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، استقامت، دین میں استقامت اختیار کرو. وہ استقامت کیا ہے، وہ میچورٹی ہے جو ہم نے اچیو کرنی ہے. آپ اپنے آپ کو اس طرح سے لے کے بیٹھ نہیں سکتے کہ بس میں ہوں ہی ایسی، یا کوئی اور آپ کو ملے کہ اس کی پرسنالٹی نا شروع سے بڑی سینسیٹیو ہے، پریشان جلدی ہو جاتی ہے. وہ ہو سکتا ہے اس کی پرسنالٹی میں یہ چیز ہو، لیکن ہم نے اب اس سے آگے جانا ہے. پرسنالٹی میں اس کی یہ چیز تھی، لیکن اب اس نے کیریکٹر پہ کتنا ورک کیا آپ نے، اور اس کو میچورٹی کی طرف کیسے لے کے گیا. ہمیں اپنے لیے بھی دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ارد گرد سب لوگوں کے لیے بھی دیکھنا ہے. اچھا جی، ایک اور چیز ہے موڈ اور ایموشن. موڈ اور ایموشن میں فرق ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. موڈ ویری کرتا ہے، ایموشن ویری کرتا ہے، دونوں ملتے جلتے ہیں. لیکن اس میں وہ فرق کیا بتاتے ہیں، مثلاً آپ کسی دن اٹھیں گے نا صبح اور آپ کہیں گے کہ آج میرا موڈ بہت خراب ہے، کچھ بھی نہیں ہوا لیکن موڈ خراب ہے، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے. اچھا، اب وہ موڈ کیا کرے گا، وہ آپ کے ایموشن پہ افیکٹ کرے گا. موڈ آپ کا ہڈن ہے
और इमोशन को वो ट्रिगर करता है कि अगर आज आपका मूड खराब है, आपको क्या बस फॉर नो रीजन मूड खराब है, या कई दफा मौसम की वजह से है, कई दफा ओवर पीरियड ऑफ टाइम छोटी छोटी बातें हो रही हैं, वो पाइल अप हो रही हैं आपके अंदर, रात को नींद ना ठीक आई हो, आपका मूड खराब है। अब मूड खराब है ना तो हम सुबह से क्या करते हैं, अगर बच्चे ने बैग नहीं पैक किया तो क्या करते हैं, उसको डांटते हैं। अच्छा, अगर मूड अच्छा है तो फिर क्या करते हैं, बच्चे ने बैग ना पैक किया, लामे कर दूं, हेल्प कर देते हैं। अगर मुलाजिम से कोई गलती हो जाए, मूड खराब हो तो क्या करते हैं, छोटी सी गलती होगी बहुत डांटते हैं, और अगर उससे कोई छोटी सी गलती मूड ठीक है तो क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, तो कोई बात नहीं। इसीलिए कहते हैं ना हम के जिस दिन आपका मूड खराब हो, बजाय इसके कि आप छोटी छोटी बातों पर झुंझलाए रहें, आप बच्चों को या घर में बता दें आज मेरा मूड ठीक नहीं है, सो गिव मी स्पेस। इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, इट प्रिडिक्ट्स हायर वर्क परफॉर्मेंस 3 times बेटर देन IQ। हमें IQ का बहुत शौक है, मेरा बच्चा लाइक हो, अगर टीचर कह भी बहुत बिहेव करता है बस ठीक है, फर्स्ट सेकेंड नहीं आता, नहीं नहीं आना चाहिए ना, क्यों नहीं आता, यानी हमारे लिए IQ इज मोर इम्पोर्टेंट देन EQ। मार्क्स तो घर आ गए, होमवर्क कॉपीज आ रही है, क्लास वर्क कॉपीज आ रही है, मुझे नजर आ रहा है कि मेरे बच्चे के कहाँ कहाँ एरर्स हैं, उनको मैंने कहाँ कहाँ फिक्स करना है, कि बच्चा अपने पीयर्स के साथ कैसे बिहेव करता है, बच्चा टीचर के साथ कैसे बिहेव करता है, ब्रेक में क्या करता है, छुट्टी के टाइम पे क्या बिहेवियर है, असेंबली में क्या करता है, क्या वो रिस्पेक्टफुल है, क्या उसके अंदर ये टॉलरेंस है कि इधर उधर की बातों को बर्दाश्त कर सके। आज से काफी साल पहले भी ये कहा जाता था कि IQ वेरी करता है, मसलन एक गांव में अगर एक बच्चा है या एक इंसान है, उसका अगर एक्सपोजर कम है, हो सकता है वो अपने इलाके के मुताबिक बहुत लाइक हो, लेकिन जब हम उसको मिले या वो शहर में आ जाए या वो नई चीज एनवायरमेंट में देखे, तो वहां पे कोई उसको बिल्कुल निकम्मा समझ ले। हम सब में से हर शख्स राई है और हमसे हमारी रईयत के बारे में पूछा जाएगा। लीडरशिप रोल में हम हर जगह हैं। आप अगर घर में हैं, आपके हस्बैंड अगर डोमिनेटिंग भी हैं, आप अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में हैं, आपको लगता है कि ज्यादा फैसले बुजुर्ग करते हैं, लेकिन जो बच्चों को आप पढ़ा रही हैं, उनसे डील कर रही हैं, खिलाना पिलाना तरबियत करनी, वो सब आपका लीडरशिप रोल है। आप ही टीच कर रही हैं, आप अपनी क्लासरूम में उस वक्त लीडरशिप रोल में हैं, और बेहतरीन लीडर वो है जिसके अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी होगी। एक मदर अगर स्टेबल नहीं होगी इमोशनली, बच्चे स्टेबल नहीं होंगे। फिर 2/3 ऑफ वर्कर्स से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आर द लीडिंग कॉज प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम डूइंग देयर बेस्ट वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो कहते हैं अगर हमें पे अच्छी मिल भी रही है ना, लेकिन हमारे साथ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है, हमारा बॉस हमें अंडरस्टैंड नहीं करता, तो जो है हम वहाँ काम नहीं कर सकते। घरों में देख लें, जब हमारी इमोशनल नीड सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम वो अच्छा फैमिली लाइफ नहीं गुजार रहे होते। फिर इसीलिए देखते हैं कि क्या है कि EQ इज वन ऑफ द बेस्ट प्रिडिक्टर्स ऑफ डाइवोर्स एंड मैरिटल सेटिस्फेक्शन। जहां पे आपकी ये जो बेसिक इमोशनल नीड्स फुलफिल नहीं होती, वहां पे फिर मसाइल जो हैं वो ज्यादा होते हैं। तो क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस? द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे अभी बात हो रही थी ना कि पता नहीं चलता उस वक्त कि मूड खराब है, मतलब अंदर से फील हो रहा है लेकिन हम उसे डिफाइन नहीं कर पाते। सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को समझना है, फिर दूसरे पे जाना है, फिर अपने आप को मोटिवेट करना है कि मुझे इमोशनली इंटेलिजेंट तरीके से इस सिचुएशन को डील करना है,
और फिर एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवरसेल्व्स एंड इन आवर रिलेशनशिप्स। हर रिलेशनशिप में, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, अपने हमसायों के साथ, जॉब्स में है तो वहां पे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में है तो इन-लॉज के साथ, अपने इमोशंस को समझना, उनके इमोशंस को समझना, मैनेज करना, और फिर क्या करना, रिलेशनशिप को अच्छा रखना, ये है इमोशनली इंटेलिजेंट होना। ये अरिस्टोटल ने कहा था ना, Anyone can become angry, that is easy. But to be angry with the right person, to the right degree, at the right time, for the right purpose, and the right way, that is not easy.
कि हर इमोशन का सही इजहार कहाँ कितना करना है. हम देखें, हम खुशी में भी आपने से बाहर होते हैं, कोई शादी देखे सब कुछ भूल जाता है.
وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ.
जब क्या होता है कि कोई कबीरा गुनाह हो जाए, कोई फवाहिश हो जाए, कोई गुस्सा आ जाए, तो माफ कर देते हैं.
यानी हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि हमारे ऊपर हर तरह के इमोशंस की मसाइल की यलगार होगी. तो असल काम तो यही है कि उस वक्त इंसान इमोशनली इंटेलिजेंट हो
कि मैंने किस तरह से सिचुएशन को डील करना है. हम उसी वक्त परेशान हो जाते हैं, बाद में याद आता है.
और फिर एक और सूरह लुक्मान, वला तुअसिर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्ध मराहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तार फखूर. अल्लाह ताला ने क्या पसंद नहीं किया, मुख्तार फतूर, फखर करने वाला, जताने वाला. अच्छा मैं उसको जवाब देती हूँ, अच्छा मैं भी उसको सीधा करती हूँ, बड़ा अपने आप को समझता है, बड़ा अपने आप को समझती है, दैट इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस. और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था कि नन ऑफ यू ट्रूली बिलीव्स अंटिल ही लव्स फॉर हिज ब्रदर्स व्हाट ही लव्स फॉर हिमसेल्फ.
जो इमोशन हम अपने लिए चाह रहे हैं हमें वही इमोशन देना है.
और इस्लाम यही बताता है हमें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू हो जाए. उम्मीद है, पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन क्या चीज थी, वो इमोशनल स्टेबिलिटी थी. हर शख्स के साथ डील करना, कैसे रहना. और मैं उस दिन जब ये पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके अज़वाज भी खुश, सहाबा भी खुश, दुश्मन उनको पसंद करते थे. जो आता था वो उनका होके रह जाता था. वो क्या चीज थी उनकी पर्सनैलिटी में जो हमें सीखने की जरूरत है कि इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसके थ्रू उन्होंने वो पैगाम जो था वो पहुंचाया. जो भी स्किल होता है ना वो हम सीख सकते हैं. तो हम इंशाल्लाह यहाँ पे जो सेशन करेंगे इसमें हम कोशिश करेंगे कि इस स्किल को सीखना है, सिर्फ सुनना नहीं है, उसको प्रैक्टिस भी करना है. और मेरे पास एक कंपैरिजन था. एक शख्स वो है जो कि जिसका आईक्यू ज्यादा है. ये नहीं है मतलब कि हम बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, तालीम अच्छी ना दें, उनकी एजुकेशन पर फोकस ना करें, लेकिन अगर हमने ब्लेंड ना किया दोनों चीजों को तो उसका नुकसान है. जिसको हमने सिर्फ और सिर्फ पोजीशन और नंबर और डिग्री के लिए कहा, आप देखिए उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी. उसके अंदर इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट और एबिलिटीज होंगी. वो बहुत साउंड होगा, हर चीज पर बोल सकता होगा, बात कर सकता होगा. वो एम्बिशियस होगा कि मैंने ये करना है, फिर मैंने ये डिग्री लेनी है, फिर मैंने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है. और प्रिडिक्टेबल होगा. प्रिडिक्टेबल क्या होता है कि हमें भी नजर आ रहा था कि हाँ इंशाल्लाह इसका मसला नहीं है, ये बच्चा पढ़ जाएगा. लेकिन अनट्रबल्ड बाय कंसर्न्स अबाउट हिमसेल्फ. यानी कि किसी से प्यार मोहब्बत जिताना नहीं उनको आता होगा, किसी के साथ हमदर्दी करना नहीं आता होगा, नरमी उसके अंदर उस तरह से नहीं होगी, इमोशनली डिटैच होगी. अब आप इसी पर्सनैलिटी में अगर हम ईक्यू शामिल कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को तालीम तो दिलवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इमोशनली इंटेलिजेंट हो गया, तो अब क्या वो सोशल एडजस्टेबिलिटी होगी. हस्बैंड के साथ एडजस्टमेंट है, बच्चे समझ नहीं आ रहे कैसे पालने, ससुराल में रहना है तो उनके साथ बात नहीं करनी सही तरह से आ रही, जॉब्स पे आप अब स्कूल में बच्चे कह देते हैं कि इसके साथ क्यों बैठूं, इसके साथ क्या करूं, टीचर बदल गई तो रोना धोना कई दफा शुरू हो जाता है. और आउटगोइंग चेयरफुल, फिर इसके अलावा उनको फियर्स उस तरह के नहीं होते. एबल टू कमिट टू पीपल एंड कॉजेस. वो जो भी फैसला करते हैं वो कमिटमेंट के साथ करते हैं, उसको कैरी करना आता है उन्हें. और उनके अंदर एथिकल सेंस बहुत अच्छी होती है, मॉरल वैल्यूज उनकी बहुत स्ट्रांग होती हैं, और जाहिर उनके अंदर सिंपथी भी होती है, लोगों के साथ सिंपथाइज कर सकते हैं. जी बिल्कुल, तालीम और तरबियत. अब इसमें ना थोड़ा सा स्टेप आगे जाती है कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है. ये जो हम जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि तीन टर्म्स को समझना है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. कौन सी चीज हमारे हाथ में है, प्रेजेंट. हम करते क्या है, पास्ट. सारा दिन सोच करेंगे, जब हम किसी के पास बैठेंगे ना कोई बात करने तो प्रेजेंट की बात नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे 1960 से. जब मैं पैदा हुई, फिर मेरे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, फिर बचपन में क्या हुई, फिर आगे क्या हुई, वो स्कार्स हम कैरी करते हैं और सारा दिन उन पे रोते रहते हैं कि मेरे माँ बाप ने क्या किया, मेरी किधर शादी कर दी, या ये ना करते तो ऐसे हो जाता, हाय अगर मैं यहाँ होती तो ये आसानी हो जाती। तौबा का भी कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पास में हो गया उस पर माफी मांग लें, इस्तग़फ़ार पढ़ लें, उसको भूल जाएं, अल्लाह सुभान ताला उसको कह रहे भूल जाओ, चैप्टर क्लोज, प्रेजेंट में मेहनत करो। अच्छा, या सारा दिन फ्यूचर की फिक्र, बच्चा नर्सरी में फिक्र ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, सारा दिन ये फिक्र हाय हमारा घर नहीं बना। तो कौन सी चीज पे हमें फोकस करना है? प्रेजेंट पे। इमोशंस के लिए भी आपने प्रेजेंट को देखना है, अगर आप पास्ट या फ्यूचर में रहेंगे आप कभी खुश नहीं रहेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस में हमने किन पांच चीजों को टच करना है। सबसे पहले हम करेंगे नोइंग ओन इमोशंस, अपने इमोशंस को समझना, अपने इमोशंस को मैनेज करना, फिर प्रोडक्टिव इमोशंस जो है अपने अंदर लेके आना, फिर दूसरों के इमोशंस को रिकग्नाइज करना, और फिर रिलेशनशिप्स को हैंडल करना। जब तक आप अपने ऊपर वर्क नहीं करेंगे आप दूसरे को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। हमारा दिल चाहता है बस वो मेरा जो घर में फलां शख्स को गुस्सा आता है ना वो ठीक हो जाए। इसमें इमोशनल कॉम्पोनेंट्स है कुछ, इसको समझें। जब हम अपने इमोशंस की बात करते हैं तो हमारे पास चार फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इमोशंस में रोल प्ले करते हैं। एक होता है हमारी इमोशनल एनर्जी। आपको पता है जो हम कैलोरीज खाना खाते हैं, कैलोरीज बनती हैं उनमें से, अब बहुत सी रिसर्च ये बताती है कि कुछ कैलोरीज इमोशनल कैलोरीज बन जाती हैं, और जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है ना तो उनकी बहुत सी कैलोरीज बर्न हो चुकी होती है। अच्छा, उस एनर्जी के साथ हम क्या करते हैं, हमारे पास आइडियाज है, हमारी इंटेलेक्ट है। जितनी हमारी इमोशनल एनर्जी सेव होगी ना उतने हम इंटेलिजेंटली बिहेव करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को जरा और से समझना है, उतना हम इंटेलिजेंटली बिहेव करेंगे, उतने आइडियाज हमारे पास आएंगे कुछ किसी भी काम को करने के, और उतना हम डिसीजन लेने में अच्छी करेंगे। आपके पास आइडियाज आते हैं उस वक्त जब गुस्सा आया, डिप्रेशन हो, परेशान हो, किसी चीज के लिए नहीं आते ना, दिमाग काम नहीं करता। कई दफा आपको कोई बताए ना, किसी से मशवरा ले और कहे कि ये कर लो, तो आप कहते फल्ला मैंने क्यों नहीं सोचा, इट वॉज सच ए सिंपल सिचुएशन, मैंने क्यों नहीं सोचा। और अगर हम किसी से मशवरा ना लें तो हम कैसा डिसीजन लेते हैं, हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं। गुस्सा आया लेकिन बर्दाश्त कर दिया, उसको सोचा कि मैंने रिएक्ट नहीं करना, थोड़ी देर जरा बैठ गए, नफल पढ़ लिए, दुआ पढ़ी, वजू कर लिया, आउज़ुबिल्ला पढ़ लिया। अब जो आप डिसीजन करेंगी वो सही करेंगी, कि ये एक आपकी इमोशनल बाउंड्री है। हम सबकी अपनी अपनी इमोशनल बाउंड्री होती है, और इस इमोशनल बाउंड्री के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। जितने हमारे इमोशन स्ट्रांग होंगे उतना ज्यादा हम फैसला जो है वो सही तरह से करेंगे, जितने हमारे इमोशंस वीक होंगे उतने हम गलत फैसले करेंगे। और ये बाउंड्री आपकी कब स्ट्रांग होगी, जितना ज्यादा आप अपने आप को समझते होंगे। आप सोचें सच्चा रहने के लिए भी हमें एक प्रिंसिपल दिया गया है, क्या कहा गया, सबसे पहले अपने आप के साथ सच्चे हों। एनवायरमेंट जो है ना, माहौल में ना बहुत कुछ हो रहा होगा, कोई लड़ रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई स्ट्रेस आ रहा है, कोई और इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन आपने क्या करना है, अपनी इस बाउंड्री का बहुत ख्याल रखना। अब इस बाउंड्री में जब भी हमें कोई इमोशनली आता है ना, हमसे डील करता है, बच्चा, हस्बैंड, फ्रेंड, नेबर, इन लॉज, पेरेंट्स, बहन भाई, तो अब वो क्या होता है, हमारी इमोशनल बाउंड्री हमें खिड़की दिखाती है, खिड़की से हमें नजर आ रहा है, वो आ रहा है मेरे से बात करने, मेरी बहन है और वो मुझे ना हमेशा इमोशनली स्ट्रेसफुल कर देती है। मेरा बच्चा है वो मैं इतना उसका ख्याल रखती हूँ लेकिन वो मुझे कह देता है कि आप तो मुझे पूछती नहीं। हम उस इमोशनल खिड़की से ये चीज देख रहे हैं कि कोई आ रहा है। अब आप इसको इस तरह से समझे कि एक घर है, बेल होती है तो हम क्या करते हैं, खिड़की से देखते हैं कौन आ रहा है, अगर कोई हमें पसंद हो तो फिर क्या करते हैं, या किसी से मिलना चाह रहे हैं, किसी का इंतजार कर रहे हैं, क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोल के उसको बिठाते हैं, उससे गपशप लगाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, खुश होते हैं उससे मिलते हैं। और अगर कोई पसंद ना हो, मसलन कोई मांगने वाला आ गया, क्या करते हैं? दरवाजा खोलते हैं, खिड़की से आपने देखा, क्या करते हैं? अवॉइड, दरवाजा नहीं खोलते। जिस शख्स से हमें खतरा हो नहीं खोलते। इसी तरह इमोशनल बाउंड्री में एक हमारी विंडो है जिसे हम देखते हैं, एक हमारा डोर है। जब आप इमोशनली किसी से डील करते हैं, हर एक के लिए आपने अपने आप को इमोशनली हर वक्त अवेलेबल नहीं करना। जब आप इमोशनली बहुत ज्यादा हर एक के सामने अपने आप को अवेलेबल करते हैं, फिर आपके प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते हैं। अगर फ्रॉस्टेड शीशा हुआ तो नजर आएगा पढ़ाई से कौन आ रहा है? नहीं आ रहा। और अगर मैंने बेल हुई, मुझे नजर नहीं आया, मैंने अंदाजा देखा कि कोई आ रहा है, दरवाजा मैंने खोला, तो क्या होगा? मसला भी हो सकता है। सरप्राइज, कोई भी गुड बैड सरप्राइज, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन शीशा क्लियर होगा तो मुझे नजर आ जाएगा कौन आना चाह रहा है। अगर मैं उससे कंफर्टेबल हूं, मैं समझती हूँ, मैं उसको अपने घर में बुलाना चाह रही हूँ, मैं आने दूंगी। इमोशनली भी एग्जैक्टली ये चीज है कि आप खिड़की से देखते हैं, अपने इमोशंस की खिड़की से देखते हैं। अंदर आपकी बड़ी कीमती चीजें हैं, आपकी इमोशनल एनर्जी है, आपके आइडियाज हैं, आपकी इंटेलेक्ट है, आपकी डिसीजन मेकिंग है। और दरवाजे का नॉब किस तरफ है? अंदर है, बाहर है? अंदर है। इट इज योर डिसीजन कि आपने इमोशनली किसको अंदर आने देना है। मिलने के लिए आपसे 100 लोग मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इमोशनल डोर आपने उसके लिए खोलना है जो आपकी इन चीजों को खराब नहीं करता, चोरी नहीं करता। इमोशनल ड्रेन कैसे होता है, आप ये समझें। इमोशनल ड्रेन तब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी खिड़की फॉगी है। वो कब होती है? मसलन लैक ऑफ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। मेरा चाइल्डहुड बहुत बुरा गुजरा, मैं बहुत अनस्टेबल रही, मुझे स्टेबल लोग कम मिले अपनी लाइफ में, मैंने बड़ी मुश्किलात देखी। तो ज्यादा चांसेस हैं कि जब मैंने अपने आप को रिकग्नाइज नहीं सही तरह किया तो क्या होगा, मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं होगी। आप रिसर्च पढ़े, वो कहते हैं जितनी डिसफंक्शनल फैमिलीज हैं, माँ बाप लड़ झगड़ रहे हैं, डिवोर्सेस हैं, सेपरेशंस हैं, वो बच्चे इमोशनली स्टेबल नहीं होते। इसीलिए हम कहते हैं ना कि अगर वालदैन में इख्तलाफ हो तो क्या करें, हम बार बार आपको बताते हैं, बच्चों के सामने ना शो करें, अपने इख्तलाफात को ऐसे हैंडल करें कि बच्चे पे उसका इम्पैक्ट ना आए। हम बच्चे के सामने हस्बैंड से तू तू मैं कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज और सेकंड बेस्ट, आप कहते हैं मैं ऐसी ठीक हूं, फिर क्या होता है? फिर जो मर्जी आता है, हमें जैसे मर्जी इमोशनली हमसे डील करता है, हम उसे करने देते हैं। तीसरी चीज वो कहते हैं ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिल्ट। आप कुछ कर ही नहीं सकते उस सिचुएशन में, और आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ले ली, वो शख्स आपको कहानी सुना के चला गया। कई दफा होता है ना, कोई आपसे मशवरा लेने आता है, मसलन किसी ने आपसे मशवरा लिया कि मेरे लिए मुश्किल है, मैं क्या करूं, आपने मशवरा भी दे दिया, वो चला गया, वो आराम से जाके अपने सारे काम कर रहे हैं, और आप परेशान, खाना भी नहीं खाया जा रहा, आपके लिए मुझे बड़ा डिप्रेशन है, मैं उसको कैसे सोची, उसका क्या बनाऊंगा, है कुछ कर दूं उसके लिए, दुआ तो करनी है, मशवरा भी दे दिया, अपना रोल प्ले कर दिया, लेकिन ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, सुबह भी सोच रही हूँ पता नहीं कुछ हुआ ना हो। अच्छा, ये गिल्ट जैसे मदर्स को कई दफा होता है, अब बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा, ठीक है आप पढ़ा रहे हैं, आप 3 घंटे बिठा रहे हैं, समझा रहे हैं, अब आप इतने गिल्ट में हैं, जो मर्जी आके आपके सामने एक जुमला भी बोल देना, इसके नंबर क्यों नहीं आए, अब बस आप इमोशनली हो गए ड्रेन। हाँ, तुझे मेरा कसूर है, जैसे बच्चा बीमार है, बच्चे को बुखार हुआ, किसी ने भी घर में कह दिया क्यों हुआ, सिर्फ ये पूछे क्यों हुआ, तो क्या होता है हमारे साथ, किसी ने कुछ नहीं कहा और सिर्फ एक जुमला बोल दिया, क्योंकि हमें अपने बैक ऑफ द माइंड में गिल्ट है कि शायद मुझसे कोई चीज मिस हुई, और जरा किसी ने पूछ दिया इसको बुखार क्यों हुआ, इसकी तबीयत क्यों खराब हुई, अब हम क्या करेंगे, हम ना उसको अपने ऊपर अटैक ले लेंगे, हम फौरन इमोशनल ड्रेन में जाएंगे, हम कहेंगे मेरा कसूर है शायद। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन कर लेते हैं, या और भी चीजें हैं, आप फैंटेसी में रहते हैं, रियलिटी कुछ और, आप हर वक्त सोचते हैं सिचुएशन ठीक हो जाए किसी तरह, या ऐसी होनी चाहिए, इस बच्चे को ऐसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड को ऐसा होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए, फैंटेसी वर्ल्ड में रह रहे हैं, उससे भी आपकी इमोशनल विंडो जो है वो फ्रॉस्टेड होगी, आपको नजर नहीं आएगा, फिर आपको कोई भी आके जरा सी बात देगा ना तो आप उसको इमोशनली अपने ऊपर ले लेंगे। अब ऐसी सिचुएशंस में होगा क्या, उसमें दो चीजें होंगी, दरवाजे का नॉब किधर है, आउटसाइड, जिसका मर्जी दिल चाहेगा, जो मर्जी आपको आके कहेगा, आपने जनाब उसकी बात सुनी और आपका मूड खराब, आप डिप्रेशन में, लोग तो आपको पहले भी बातें कर रहे थे, अगर आप स्टेबल है ना तब भी लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली आप हर एक असर नहीं दे रहे, आपका डोर नॉब अंदर है, आपने क्लियरली देख लिया, हाँ ये जब आती है ना मुझे डिप्रेसिंग बातें सुनाती है, तो आप क्या करेंगे, क्लियर विंडो से आपने देखा, आपने दरवाजा नहीं खोला, उसने बातें भी की, उसने आपको बातें भी सुनाई, आप पे कोई असर नहीं हुआ, इसको बिल्कुल इस तरह से ले जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी बातें वो सुनाते थे और क्या कुछ कहते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया उस बात पे, कभी उस तरह से हुए परेशान, ऐसी परेशानी अपने पर तारी की कि कोई काम ही नहीं किया, तो इमोशनली इंटेलिजेंट शख्स से जब कोई डील कर रहा होगा तो वो हैंडल कर लेगा, लेकिन जब हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है ना तो जो मर्जी आ रहा है, किसी ने मुझे कोई बात कह दी, सारा दिन मैं परेशान, इसने मुझे ये कह दिया, लोग दरवाजे से नहीं आते सिर्फ, जब आइडेंटिटी क्राइसिस हो, वीक बाउंड्री और स्ट्रेस आया, हमने उस स्ट्रेस को शेयर कर दिया और परेशान हुए और आइडेंटिटी क्राइसिस, हम इस साइकिल से बाहर ही नहीं निकलते, तो क्या करना है, ये प्रिंसिपल अब आपने पूरे हफ्ते अप्लाई करना है, आपने ये देखना है कि मेरी बाउंड्री आज कैसी थी, स्ट्रॉन्ग थी, वीक थी, कौन कौन सी सिचुएशंस में ये जो बाउंड्री थी इसमें या तो विंडो मेरी ऐसी थी कि मुझे नहीं पता चला कोई शख्स आके मुझे इमोशनली ड्रेन कर गया, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं मेरी लाइफ में जो मुझे इमोशनली ड्रेन करते हैं, कहाँ पे डोर नॉब अंदर है, कहाँ पे डोर नॉब बाहर है, और ये याद रखना है कि हम अपने किए के 100% रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इमोशन के। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।